कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को हमारे साथ बांटिए और प्रार्थना के साथ सुनते रहिए सत्यवचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा फिर से एक बार मसीह यीशु के नाम से नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन की संगति में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों दूसरे राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज का अध्ययन हम सब के लिए दूसरे राजाओं की पुस्तक से अंतिम अध्ययन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि योशिय्याह एक अच्छा राजा था। जब उसे धर्मशास्त्र मिला तो उसने उसे पढ़वाया और देश में जागृति आई। उसने मूर्ति पूजा संबंधित समस्त बातें देश से समाप्त कर दी। उसने समलैंगिकों को देश से बाहर निकाल दिया और उसका शुद्धिकरण किया। परंतु दुख की बात तो यह है कि उसके पुत्र पिता के आचरण अर्थात पद चिन्हों पर न चल पाए और जैसा यिर्मयाह ने कहा था वैसा ही हुआ। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 24 एवं 25 से अध्ययन करेंगे, जहाँ पर हम यहूदा के बंधुआई में जाने के बारे में देखते हैं। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर के निकटता में आए और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे हर एक के जीवन में देते हैं। इस समय हमारी प्रार्थना है पिताजी, जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, आप हमें अपने बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुन करके समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके और उन उत्तम बातों को अपने जीवन में रख सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन से निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं और हो सकता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें आज इस बात का स्मरण होने पाए कि आपने उन्हें रचा है, आप उनसे प्रेम करते हैं, उनकी हर एक वेदनाओं को, हर एक परेशानियों को आप समझते हैं, आपने उनकी आंखों के आंसुओं को देखा है। आज आप उनसे बातचीत करेंगे, आप उनकी सहायता करेंगे। पिता परमेश्वर, हर एक श्रोता भाई बहनों पर आपकी आशीष आज मिलने पाए। इस समय को हम सबको आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम देखेंगे राजा नबूकदनेस्सर जो यहूदा पर चढ़ाई करता है। मेरे साथ आप निकालिए दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसका एक पद। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसका एक पद लिखा है, उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा, तब उसने फिरकर उससे बलवा किया। मेरे मित्रों, मिस्र के फिरौन ने यहोयाकीम को सिंहासन पर बैठा दिया, परंतु उसका संपूर्ण एशिया का अधिकार बेबीलोन के नबूकदनेस्सर के हाथों में चला गया। जब नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर चढ़ाई की, तब यहोयाकीम ने 3 साल उसकी प्रभुता स्वीकार की, परंतु अंत में विद्रोह कर दिया। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 2 से 3 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिए कसदियों, अरामियों, मुआबियों और अमोनियों के दल भेजे। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ। मित्रों, जैसा हमने देखा कि मनुष्य एक दुष्ट राजा था, यदि शकीना उसके युग में मंदिर से नहीं जाता तो उसके बाद उसके प्रस्थान के लिए दुष्टता नहीं थी। अब क्योंकि यहूदा मनुष्य के पापों से दूर नहीं था, अर्थात दूर नहीं हुआ था, इसलिए वे बंधुआई में अवश्य जाएंगे। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था जिसको यहोवा ने क्षमा करना ना चाहा। मेरे मित्रों, यह सच है कि परमेश्वर पाप क्षमा करता है, परंतु पापी को मन फिराना भी तो आवश्यक है। कुछ पाप क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। यद्यपि मसीह पापों के लिए मरा, पाप क्षमा नहीं होने का कारण है कि मनुष्य पश्चातापी आत्मा लेकर मसीह के निकट नहीं आता है। मेरे मित्रों, संसार में केवल वही पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि वह मेरे और आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, वह आपके लिए मरा और उसने आपके पापों का दंड चुकाया है। और कौन है जो आपके पाप क्षमा कर सकता है? केवल वही मार्ग और सत्य और जीवन है जो आपको बचा सकता है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं यहोयाकीम की मृत्यु और यहोयाकीन का राज्य। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, यहोयाकीम के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे गए? निदान यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ। पिता और पुत्र के नाम अत्यधिक मिलते जुलते हैं, अतः उलझन में पड़ना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पिता का नाम यहोयाकीम है और बेटे का नाम यहोयाकीन है। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 24 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, और मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया, क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था सबको अपने वश में कर लिया। मेरे मित्रों, यही वह प्रदेश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों से की थी। इसराइल की अपेक्षा बेबीलोन का उस पर अधिकार क्यों था? हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय के 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम नहुस्ता था जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रिय मित्रों, यही कारण है कि वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप में लिप्त थे। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने उन्हें एक शर्त पर वह देश दिया था, उनका आज्ञा पालन करना। क्या वे अब भी उस देश के अधिकारी थे? जी हाँ, परमेश्वर ने उन्हें वह देश दिया था जिसकी वाचा शर्त रहित थी, परंतु वहां वास करना एक शर्त पर आधारित था। वे उस शर्त को पूरा करने से चूक गए थे। हम देखते हैं कि यहोयाकीन बंदी बनाया जाता है और प्रथम विस्थापन होता है। दूसरी राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया, और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वह आप वहां आ गया, और यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया, और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि लगभग 605 ईस्वी पूर्व में राजा नबूकदनेस्सर सब राजकुमारों को बंदी बनाकर ले गया। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 13 से 15 पद में, तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया और सोने के जो पात्र इसराइल के राजा सुलेमान ने बनवाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को जो मिलकर 10,000 थे और सब कारीगरों और लोहारों को बंधुआ करके ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। और वह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। मेरे प्रियो, यह एक दुखद एवं विषादपूर्ण कहानी है। हम देखते हैं राजा नबूकदनेज़र सिद्दीकिया को राजा बनाता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 17 से 19 पद में हम पढ़ते हैं, और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिद्दीकिया रखा। जब सिद्दीकिया राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम हमूतल था जो लिबनावासी इर्मियाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रियो, सिद्दीकिया यहोयाकीम का चाचा था। आप सोच रहे होंगे कि बंधुआई के कारण वह दीन बन गया होगा। जी नहीं, वह बदला नहीं, वह पूर्व के राजाओं की ही सी चाल चला, और संकट के कारण मनुष्य में दो में से एक परिवर्तन जरूर आता है। वह या तो दीन बनता है या कठोर बन जाता है। वह या तो परमेश्वर के पास आ जाता है या उससे दूर हो जाता है। मित्रों, कष्ट एवं पीड़ा मांगने के बाद आप वैसे ही नहीं रहते जैसे पहले थे। धूप मोम को पिघलाती है तो मिट्टी को कठोर बना देती है। सूरज तो वहीं रहता है, उसे कोई हटा नहीं सकता है। आज आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? दीन बन रहे हैं या कठोर बन रहे हैं? हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। मेरे प्रिय मित्रों, झूठे भविष्यवक्ताओं ने फिर कहा, देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जबकि परमेश्वर इसराइल के साथ नहीं था, क्योंकि इसराइल परमेश्वर के साथ है ही नहीं। हमें कल्पना से सावधान रहना चाहिए। मैंने अनेकों को कहते सुना है, मेरे लिए यह परमेश्वर की इच्छा है, उसने मुझ पर यह प्रकट किया है। तब वे अपने मन की बात करते हैं और चूक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। मैं ऐसे प्रचारकों को भी जानता हूं जो सेवा क्षेत्र में जाकर निराश लौटते हैं और कहते हैं, मैंने वहां जाकर गलती की। मैं उनसे पूछता हूं, आप तो कहते थे कि यह परमेश्वर की इच्छा थी और आपको इस पर पूरा विश्वास भी था। उनका उत्तर होता है, मैं तो यही सोच रहा था। उचित होगा कि हम ऐसा ना सोचें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को हमारे साथ कहते हैं तो हमें इसे सुनिश्चित भी करना है। अच्छा होगा कि हम यह ना सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसकी अपेक्षा हम यह सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के पास हैं। यहूदा राष्ट्र की यही समस्या थी। वे परमेश्वर से बहुत दूर थे, परंतु सोचते थे कि वे परमेश्वर की प्रजा हैं और परमेश्वर उनकी रक्षा अवश्य करेगा। मित्रों, यह सच है, यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो वह आपकी सहायता नहीं करेगा। यदि आप उसके साथ हैं तो निश्चय ही वह आपकी सहायता करेगा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 25 से अध्ययन जारी रखेंगे। मित्रों, अध्याय 25 में हम उनका अंतिम विस्थापन को देखेंगे। नबूकदनेज़र ने 3 बार यरूशलेम पर चढ़ाई की थी। इस बार वह राजसी लोगों को, सेना को और दस्तकारों को ले गया, परंतु उसने यरूशलेम का विनाश तीसरी बार में किया। हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर ने सिदकिया को यहूदा का राजा बनाया था, परंतु 3 वर्ष पश्चात उसने विद्रोह किया और राजा नबूकदनेस्सर ने अंतिम बार आकर यहूदा का अंत कर दिया। मित्रों, हम आगे देखेंगे इसका घेराव। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद। और सिदकिया ने बाबेल के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर कोट बनाए और नगर सिदकिया राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, सही तिथि इस घेराव का महान महत्व दर्शाता है। यह यरूशलेम के विनाश का आरंभ था। हम आगे पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 3 पद में। 4वें महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। मित्रों, कष्टों की तीव्रता का वर्णन विलाप गीत में हमें व्यक्त है और यहां भी उन्हीं बातों को हम देखते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक के 25 अध्याय उसके 4 से 6 पद में आगे लिखा हुआ है, तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। कस्ती तो नगर को घेरे हुए थे, परंतु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कस्तियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा लिया और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। मेरे मित्रों, वैरी शहर में प्रवेश कर गए थे और राजा अपनी सेना के साथ भागा, परंतु वे पकड़े गए। यर्मिया ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, परंतु राजा उसे देशद्रोही समझता था क्योंकि वह सच कहता था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उन्होंने सिदकिया के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिया की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गए। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। मेरे मित्रों, उसे झूठे भविष्यवक्ता भरम में रखे हुए थे। वह परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बात भी तो नहीं सुनता था। उसे अंधा बनाकर बंधुआ कर लिया गया। हम आगे पढ़ते हैं यरूशलेम का विध्वंस, दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 9 पद में। और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को, आग लगवा कर फूंक दिया। मेरे प्रिय मित्रों, विद्रोह के कारण राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को ऐसा ध्वंस किया कि जब नहेमिया 70 वर्ष के बाद वहां आया तो उसे देखकर उसकी आशा जाती रही, परंतु उसने प्रजा को प्रोत्साहन दिया। उसके लिए सबसे बड़ा काम था कि वह निरुत्साह पर जय को प्राप्त करे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया था कि परमेश्वर यरूशलेम का नाश नहीं होने देगा, परंतु राजा नबूकदनेस्सर ने उसे ध्वंस कर डाला। मेरे मित्रों, परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है। वह राष्ट्र कहां से आया था? परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बंधुआई में भेजा। वह दिन उनके लिए विषाद का दिन था। हमारे लिए यह एक शिक्षा है कि हम परमेश्वर के निकट रहें। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, और यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को कस्तियों की पूरी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, ढा दिया, और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान बंधुआ करके ले गया। परंतु जल्लादों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कितनों को दाख की बारियों की सेवा और कस्तकारी करने को छोड़ दिया। मेरे मित्रों, उन्होंने वहां उन लोगों को छोड़ दिया जो किसी काम के नहीं थे। दूसरी ओर कर वसूल करने के लिए वे चाहते थे कि वहां पर कोई खेती रहे। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, और यहोवा के भवन में तो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, इनको कस्ती तोड़कर उनका पीतल बाबिल को ले गए और हांडियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को जिनसे सेवा टहल होती थी वे ले गए। मेरे प्रिय मित्रों, राजा नबूकदनेस्सर की सेना ने पूरा सफाया कर दिया। मंदिर आग में ध्वंस किए जाने से पूर्व पूरी तरह लूटा गया था। पूरी संपदा बेबीलोन को चली गई थी। हम दानियल नबी की पुस्तक के अध्ययन में देखेंगे कि मंदिर के पात्र जो बेबीलोन के खजाने में रखे गए थे, उन्हें राजा बेलसर ने निकलवाया और अपने 1000 प्रधानों को दिए हुए भोज में काम में लिया था। यरूशलेम लूटा गया, जलाया गया और वह नगर मलबे का ढेर मात्र रह गया था। मेरे प्रिय मित्रों, यरूशलेम 27 बार ध्वंस किया गया था और हर बार उसका पुनः निर्माण मलबे पर किया गया, अर्थात वहां पर कुछ नहीं, सिर्फ मलबे थे जिस पर निर्माण स्थापित किया गया। आज का यरूशलेम जिस पर्वत पर बना है वह वास्तव में पूर्वकालीन यरूशलेम नगरों के मलबे का ढेर है। लोग प्रायः कहते हैं यरूशलेम में आप जाएं तो आपको यीशु के चरणों के चिन्हों पर चलने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु मेरे मित्रों, आप वहां नहीं चलेंगे जहां यीशु चलता है। वह नगर जहां यीशु रहता था और चलता था, लाखों टन मलबे के नीचे वह दब चुका है। किसी किसी स्थान पर तो आपको 20 फीट या 25 फीट और कहीं कहीं तो 45 फुट नीचे देखना होगा कि उस नगर को देख पाए जहां यीशु रहता था। मित्रों, हम देखते हैं गदल्याह का अधिकारी बनाया जाना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 24 पद में हम पढ़ते हैं, और गदल्याह ने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बाबेल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। जो नागरिक वहां बचे रह गए थे उनके ऊपर राजा नबूकदनेस्सर ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया। उन्हें गदल्याह और यिर्मयाह के परामर्श स्वीकार करने थे कि वे वहीं बस जाएं और इस नई सरकार को स्वीकार कर लें, परंतु उन्होंने गदल्याह की हत्या कर दी। तब हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 25 और 26 पद में पढ़ते हैं, परंतु सातवें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माएल, जो एलिशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े, सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत से लोग मिस्र प्लान कर गए और वहां बस्ती बसा ली। यर्मिया यद्यपि जाना नहीं चाहता था, फिर भी उसे वहां जाने के लिए बाध्य किया गया। हम आगे पढ़ते हैं यहोयाकीन की मुक्ति। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 27 से 30 पद को पढ़ते हैं। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष में बाबेल का राजा एविल्म रोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बाबेल में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। मेरे प्रिय मित्रों, दुष्ट एविलम रोधक बेबीलोन की राजगद्दी पर बैठा तो उसने सर्व क्षमा दी, यद्यपि उसके दरबार में अन्य राजा भी थे। यहोयाकीन को उनके मध्य सम्मान का स्थान दिया गया। यह बड़ी रोचक बात है कि राजाओं का युग दाऊद के इस अंतिम वंशज के दयाधान के साथ समाप्त होता है। वह बेबीलोन के बंदी गृह में रहते हुए वृद्ध हो गया था और उसे प्रतिदिन का भोजन मिलता था। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारे दूसरे राजाओं के पुस्तक का अध्ययन भी समाप्त होता है। परंतु मैं यह विश्वास करता हूँ कि हमारे इस अध्ययन की श्रृंखला में आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई नई बातों को सीखा है, राजाओं के जीवन से, भविष्यद्वक्ताओं के जीवन से, कि वे किस प्रकार परमेश्वर के निकटता में रहे। हमने इस बात को देखा कि जब जब वे परमेश्वर के निकटता में रहे, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिए, परंतु जब जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उन पर दंड दिए और यहाँ पर इसका परिणाम हम देख चुके हैं कि वे अब बंधुआई में हैं, बाबुल की बंधुआई में हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को पूर्ण रीति से नाश कर दिया है। मेरे प्रिय मित्र, आज हम अपने आत्मिक जीवन की ओर झांक करके देखें, क्या मेरा जीवन परमेश्वर की निकटता में है? क्या मैं उस आशीष को प्राप्त कर रहा हूँ जिसे परमेश्वर मुझे, आपको और कलीसिया को देना चाहता है? यदि आज हम जागृत नहीं हैं, तो हमारे लिए शर्म की बात है। आइए आज हम परमेश्वर की निकटता में आए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं एक नया जीवन जीना चाहता हूँ, नया जीवन जीना चाहती हूँ और मैं आपके चरणों में अपने जीवन को अर्पण करती हूँ, करता हूँ, प्रभु आप मेरी सहायता करें। मेरे प्रिय, निश्चय जाने परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, आपके जीवन में शांति देंगे, आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर हैं। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मित्रों, जब हम नए अध्ययन में आएंगे, नए पुस्तक के साथ में, आप अवश्य ही इस अध्ययन के बारे में लोगों को बताएं, ताकि वे भी परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। See you.